जी सर, तो यानी कह सकते हैं कि जो जब जो माँ है अगर बच्चे को पीलिया होता है तो वो हल्दी खा सकती है और बच्चा येलो कपड़ा भी पहन सकता है।
बिल्कुल पहन सकता है जैसे, और हल्दी अगर माँ को देंगे लीवर को और प्रोटेक्ट ही करेगा जैसे, नुकसान कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि वो पीलिया पीला रंग जो होता है वो हल्दी के कारण नहीं होता है, क्योंकि एक जो पीलिए केस में एक सीरम बिलरुबिन नाम का एक केमिकल्स होते हैं जो ब्लड में बढ़ जाते हैं जैसे, उसे वो जो पित्त कहते हैं पिताशय में जमा होता है पित्त के कारण, तो उस कारण से छोटे बच्चे में मैं पहले बता दिया कि बच्चे का लीवर इमेच्योर होता है जो उस केमिकल को अपने अंदर ले नहीं पाता जैसे, जिस कारण से ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। जब पीलिया के लेवल ब्लड में नवजात शिशु में 5 से ज़्यादा और बड़े लोगों में खास के अगर 2 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा अगर हो जाता है तो हमारे स्किन में आँख पीले होने दिखने शुरू हो जाते हैं जैसे, तो इसके दोनों अलग अलग कारण हैं। लेकिन नवजात शिशु के जो पीलिया होते हैं 100 में 40% बच्चे को होते हैं और ये मैक्सिमम बच्चे अपने आप इसमें ठीक हो जाते हैं, कुछ बच्चे को फोटोथेरेपी या अन्य चिकित्सा से इसको ठीक किया जा सकता है।
जी डॉक्टर साहब, अभी तो पैदा हुए बच्चों की के बारे में बताया कि उनको 37 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग को रखना है, माँ को अपने पैदा हुए बच्चे को अपने स्किन से सटा कर रखना है कि जिससे कि उस जो टेम्परेचर माँ का है वही बच्चे का मेंटेन रहे। डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आप भी तो बच्चे रहे होंगे, आप भी पैदा हुए होंगे, तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ रही।
मेरी तो जहाँ तक मेरी माता जी ने बताया मेरी तोड़ी हुई थी, और मेरी शिक्षा दीक्षा बिहार में झंझारपुर एक कस्बा था, सब जगह था, तो मेरी माध्यमिक और प्राथमिक और मिडिल स्कूल तीनों शिक्षा मुझे प्लस टेन तक मैंने वहीं से किया जैसे, झंझारपुर केजरीवाल हाई स्कूल था वहाँ से मैंने किया, रामकृष्ण मध्य विद्यालय था झंझारपुर में वहाँ से मैंने मिडिल स्कूल पास किया, और प्राथमिक शिक्षा भी मैंने झंझारपुर स्कूल प्राथमिक विद्यालय था, सारे सरकारी संस्थान थे वहीं से मैंने किया।
तो सर जैसा कि आज की अगर बात करें तो आज आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, तो क्या बचपन से ही स्लैम बुक में आपने यही लिख रखा था कि आपको एक डॉक्टर ही बनना है?
बचपन से नहीं लिखा था, जब मैं 8th क्लास में था तब मेरे पिताजी, चूँकि पहले अक्सर जो पेरेंट्स होते थे वो बच्चे को गाइड करते थे आपको इस फील्ड में जाना है, चूँकि पहले हम लोगों के समय में 2 ही फील्ड हुआ करते थे जो सुनते थे, या तो डॉक्टर इंजीनियर, जो अच्छे लड़के होते थे लोग कहते नहीं डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, या नहीं तो फिर जो लोक सेवा आयोग होते थे तो उसके लिए लोग जाते थे, लेकिन हम लोग क्या तो 8th क्लास में मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि आप डॉक्टर बनते तो मेरी इच्छा है, तो मेरे मन में चूँकि मैं मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी बायोलॉजी मैं पढ़ता था तो, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर मैं कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे हम सोचे ठीक है मैं जब प्लस टू करूँगा 10th करने के बाद, तो जब मैं 10th पास किया तो फिर मैंने बायोलॉजी लिया जाए।
मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि इंटरेस्ट आपको मैथ में था लेकिन पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए या उनको उनको जैसे कि वो आप उनका से एक सपना था कि आप डॉक्टर बने, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए आपने फिर 11th 12th में बायोलॉजी से पढ़ाई की और आज आप उन्हीं के सपने को पूरा करते हुए एक डॉक्टर हैं।
यस, मैं पिताजी ने एक बार कहा था, लेकिन मुझे डॉक्टर को बचपन में जब मैं देखता था तो देख के बहुत ही अच्छा लगता था कि हम लोग जहाँ रहते थे डॉक्टर को एज ए भगवान के दर्जा या प्लस सोसाइटी में एक बहुत ही ऊंचा दर्जा था, जब भी कोई डॉक्टर किसी घर विजिट करते थे तो अगल बगल के सारे लोग आ जाते थे, उनका बैग एक हाथ में बैग लेते थे कोई, उनका हम लोग के यहाँ MBBS डॉक्टर भी मेरे समय में वो साइकिल से या कभी कभी स्कूटर हुआ करते थे जैसे, मैं टीच की बात बताता हूँ, तो सारे लोग आ जाते थे, कुर्सी लाते थे, बैठाते थे, चाय पिलाते थे, डॉक्टर देखते थे, तो एक बड़ा ही मतलब सुकून मिलता था उनकी इज्जत देख करके जैसे, कि समाज में जो डॉक्टर की इज्जत थी लोग जानते भी थे, जितना नेम एंड फेम डॉक्टर्स का सोसाइटी होता था आप इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, तो वो नेम एंड फेम वो इज्जत जितना डॉक्टर्स का होता था, तो वो मेरे ही मन में देख के कभी नहीं लगता था कि नहीं डॉक्टर बनने के बाद जो है एक सुकून मिलता था, किसी का आप एक तो जान बचाते हैं प्लस जो इज्जत मिलती थी, तो मेरे मन उसके बाद से धीरे धीरे भाव आने लगा जैसे और मैं उस पथ पे चल पड़ा।
जी सर, तो ये तो आपने बिल्कुल ही सही कहा है कि अगर इस धरा पे भगवान के बाद कोई है तो वो एक डॉक्टर है, और इसी के साथ मैं 4 पंक्तियां आपके लिए कहना चाहती हूँ कि निराशा में भी आशा की लौ जगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं, उनकी सेवा भगवान से, उनके महान कर्मों से इस हम इंसान उनको धरती पे भगवान की संज्ञा देते हैं।
वाह जी, मैं वाह, तुमने ये कहाँ से कविता निकाल ली?
सर, जैसे कि हम सभी जानते थे कि आज हमारे बीच डॉक्टर एस के मिश्रा जी आने वाले हैं, तो मैंने ये कहीं से सर के लिए खोज के रखा था।
क्या बात है।
तो सर, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, तो बेसिकली आपने साइंस से ही पढ़ाई की होगी। आपने जैसे कि अभी बताया 11th 12th में आपने साइंस लिया, आगे आपने बीएससी किया।
नहीं, मैंने बीएससी नहीं किया, मैं प्लस टू करने के बाद एमबीए, हम लोग के यहाँ आजकल नीट की एग्जाम होता है एमबीएस एंट्रेंस के लिए।
जी जी, एमबीबीएस में जो बच्चे एंट्रेंस मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं उनको नीट का एग्जाम देना पड़ता है।
हम लोग हर स्टेट्स के अलग एग्जाम होते थे। तो बिहार में एमडीएटी होता था, मेडिकल डेंटल एडमिशन टेस्ट होते थे। 520 या 80 सीट थे पूरे बिहार में। तो बायोलॉजी लेके बच्चे होते थे वही इसमें बैठ सकते थे, एस्पिरेंट्स जो होते थे। तो उस वक्त हम लोग क्या करीब 100,000 स्टूडेंट के आसपास बैठते थे इसमें, जो है हर जगह जो है। तो मैं हम लोग 87 में मैंने इंटर किया था। उस वक्त उत्तर बिहार में, चूँकि मैं दरभंगा से प्लस टू किया था, तो भीषण बाढ़ आई थी। तो हम लोगों के सारे सेशंस लेट हो गए थे, निकलना मुश्किल, सारे सड़क यातायात को हम सब कुछ बंद हो चुका था। बहुत मुश्किल से हम लोग, फिर 88 में मैं पटना गया था। पटना में ऑब्स्टेट्रिक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैंने कोचिंग किया। और 89 में मुझे एक साथ कई सारे एग्जाम मैंने दिए, जिसमें ऑल इंडिया उसी वक्त स्टार्ट हुआ था। तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल प्री डेंटल जो उस वक्त 15% सीट हर एक स्टेट से लेकर के एग्जाम होता था, तो मैं उसमें भी कम्पीट कर गया था। बिहार में मुझे हो गया था, मैं कंबाइंड एग्रीकल्चर बिहार में होते मैं उसमें कम्पीट कर गया था। मैं बी फार्मा भी कम्पीट कर गया था, सारे कम्पिटिशन। वेटनरी कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसमें भी कम्पीट कर गया था। एक साथ मैं 4-5 में किया था, लेकिन फिर मैं एमडीएटी के थ्रू दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में मैंने एडमिशन लिया। जो है
डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लगा कि आप बचपन से ही एक होनहार छात्र थे और आपने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया, और उसके बाद आपने अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर वाली लाइन चूज की। डॉक्टर साहब, अभी शुरुआती दौर में जब हमारी आपकी बात स्टार्ट हुई, तो आपने बताया कि हम यहाँ पे बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो आपको दिमाग में ये कैसे आ गया कि हमें बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ बनना है? इसके लिए क्यों आपने स्पेशलाइजेशन किया, किसी और फील्ड में क्यों नहीं गए?
MBBS तक तो चूंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, चूँकि MBBS में 22 सब्जेक्ट होते हैं, और हम लोग के समय में फर्स्ट MBBS, सेकेंड MBBS, थर्ड MBBS और फाइनल MBBS होते थे। तो उस वक्त तो आदमी, चूंकि मेडिकल साइंस शुरू से ही बदलते रहा है, जैसे समय समय पे, हम लोग समय में पहले MBBS डॉक्टर ही काफ़ी हुआ करते थे, उसके बाद MDMS का समय आया, आज सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है। जैसे तो हम लोग समय में कंपटीशन होते थे, तो उसके बाद लोग जब MBBS करने के बाद इंटर्नशिप करते थे, सोचते थे मुझे किस फील्ड में जाना है। कोई चाहता सर्जन बन जाए, कोई चाहता फिजिशियन बन जाए, कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ, कोई आँख में, कोई शिशु रोग विशेषज्ञ। जैसे तो बच्चे के रोग विशेषज्ञ बनने के लिए मेरे मन में, चूंकि मैंने इंटर्नशिप के बाद हॉस्पिटलशिप भी की थी, और ख़ास कर मैं देखता था कि भारतवर्ष में बच्चों की शिशु जो मृत्यु दर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। हम लोगों के समय में 1000 पे 108 बच्चे अंडर 5 जो थे वो एक्सपायर कर जाते थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं शिशु रोग विशेषज्ञ बनूँ तो मैं भारत में शिशु मृत्यु दर को मैं कम करने का काम करूँगा, जिससे देश में हमारा देश का जो ये पैरामीटर है उसको मैं कम करके और देश के स्वास्थ्य सेवा को मैं लाभ पहुंचा सकता हूं।
डॉक्टर साहब, आपने शिशु मृत्यु दर की बात की, और उस समय आपने बताया कि जब आप की स्टूडेंट लाइफ थी या आपने तुरंत ही आप MBBS करके निकले थे, तो शिशु मृत्यु दर ज़्यादा थी। क्या वर्तमान समय में शिशु दर मृत्यु दर जो हो गई वो कम हो गई है?
काफ़ी कम हुई है।
तो इसके पीछे का कारण क्या है?
काफ़ी इसका है कि सरकार ने जगह जगह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़े हैं, काफ़ी विशेषज्ञ डॉक्टर्स शिशु रोग विभाग में काफ़ी डॉक्टर्स मतलब हो गए हैं, और लोगों में खासकर अवेयरनेस, आजकल हमारे जो
जागरूकता आ गई है,
जो हमारे लेडीज हैं, जो हमारी स्त्रियाँ हैं, माता बहनें हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, काफ़ी मतलब लास्ट 25 ईयर्स में काफ़ी हम लोग इस पैदान पर हैं, जिस कारण से पहले बहुत चीज़ें थी कि लोग नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ लोग अंधविश्वास में पलते थे, जिस कारण से बच्चे हमारे कालग्रसित हो जाते थे समय से पहले। जैसे तो इस कारण से टीकाकरण बहुत ही बड़ा, काफ़ी डिजीज के अगेंस्ट में आजकल वैक्सीनेशन आ गया है, जैसे तो उस कारण से मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। जैसे
जी सर, तो सर जैसे कि आप आज एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और अभी पिछले कुछ समय की बात करें तो अभी वो दौर दूर नहीं है जब हम अभी कोरोना से उभरे हैं, तो क्या कोरोना टाइम में इसमें बच्चों पे क्या असर पड़ा, छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ा?
कोविड-19 कोरोना का जब पैंडेमिक आया था 2020 लास्ट टू ईयर्स में, तो पहले तो एडल्ट लोग काफ़ी सफ़र किए था कि इस बार इस पेंडिंग बच्चे गए, लेकिन ऐसा देखा गया कि इस वायरस का बच्चे पे इन्फेक्शन तो हुए लेकिन ये काफ़ी असर नहीं डाल पाया बच्चे पे, जैसे बहुत ही मामूली बच्चे में सर्दी खांसी जुकाम रह के ही रह गया, जिस तरह एडल्ट लोगों में काफ़ी न्यूमोनिया केसेस आए 21 के सेकेंड एपिडेमिक जो फेज था तो उसमें काफ़ी एडल्ट्स कालग्रसित हो गए इस बीमारी से, लेकिन बच्चे पे इस कोरोना का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा।
जी सर, तो सर जैसा कि कोविड टाइम में आप सभी डॉक्टर लोगों ने बहुत ही मेहनत से काम किया, दिन रात एक करके काम किया, तो मैं एक छोटा सा सॉन्ग आप सभी डॉक्टर के लिए सुनाना चाहती हूँ, अपने सभी लिसनर के सामने मैं एक छोटा सा सॉन्ग रखना चाहती हूँ कि ये तो सच है कि भगवान है। तो सर इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे फिर रूबरू कराते हैं अपने लिसनर को, तब तक के लिए सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला, ओ, 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 कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देता होती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंसके हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है,
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
तो वेलकम बैक, वापस आ जाइए। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग था, और इसी के साथ डॉक्टर साहब से आइए फिर से आपको रूबरू कराते हैं। और सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप हेड स्पेशलिस्ट हैं, तो प्लीज़ हमारे लिसनर को ये बताइए कि निमोनिया की अगर बात करें तो सर ये क्यों हो रहा है और क्या इसके लक्षण हैं और इससे बचाव कैसे किया जाए?
आजकल ठंड के मौसम में, खासकर 2 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, उन्हें ब्रोंक्यूलाइटिस, जिसको आम बोलचाल के भाषा में लोग निमोनिया कहते हैं, काफ़ी केसेस हो रहे हैं। ये ब्रोंक्यूलाइटिस वायरस एक रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस होते हैं, साथ और कई वायरसेज होते हैं, उस कारण से ज़्यादा होते हैं। इसमें बच्चों को अचानक जुकाम के साथ नाक फड़कने लगती है, पसली चलने लगती है, वो सैंसे की आवाज़ करने लगते हैं, हल्का फीवर उसमें आता है, बच्चे छोटे बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, जो बड़े बच्चे भी होते हैं वो उसमें अक्सर सांस जल्दी जल्दी लेने के कारण जो है उनके भी दिक्कतें होने लगती है जैसे। तो ये एक वायरस डिजीज़ है, और ठंड होते हैं कि कुछ वायरसेस लो टेम्परेचर पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में अगल बगल ये वायरस होते हैं। और ख़ास के ये वायरसेस घर के अंदर जो हमारे बड़े लोग होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं, ये वायरस उसको कैरी करके घर में लाते हैं और आते अपने अपने बच्चे को गोदी में उठाते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। तो उस कारण से वायरस तो एडल्ट पे तो वायरस अटैक नहीं कर पाता है, चूँकि एडल्ट की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है या उनको बचपन में हो गया होता है, तो उस कारण से उस पर ये वायरस का कोई सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन छोटे बच्चे जो इस वायरस के संपर्क में कभी नहीं आए होते हैं, उस कारण से उस बच्चों को ये हो जाता है। तो मैं सलाह दूंगा, जो बड़े लोग बाहर से घर आते हैं तो अपना मास्क लगा कर आएँ, घर में आने से पहले हाथ पैर अच्छी तरह से धोएँ, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, तभी बच्चे को छुएँ, तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है।
डॉक्टर साहब, हमने वायरस की बात की, किसी ज़माने में हमारी दादी, एक हल्का हल्का हमें याद आ रहा है, आज तो मैं 50 साल का हो गया, कि घर में कंडा सुलगा देती थी। तो कंडे के पीछे इसका साइंटिफिक रीज़न भी कुछ रहा होगा, वो क्या था?
कंडे का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था, क्योंकि हीट, ठंड के समय में कंडे में आग हीट के कारण तो टेम्परेचर उससे होता था, आसपास के इन्वायरमेंट में से हीट जो हमारा लो टेम्परेचर था, टेम्परेचर बढ़ जाता था। तो चूँकि हर वायरस का अपना एक एक टेम्परेचर का एक लेवल होता है, उसी टेम्परेचर पर एक्टिवेट होकर वो अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है जो है। अदरवाइज उस कंडे से हीट और हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए, ठंड में बच्चे अगर हाइपोथर्मिया हो जाएगा तो शरीर का टेम्परेचर अगर नॉर्मल नहीं रहेगा तो उस कारण से बच्चे वैसे बीमार हो जाएंगे। उसकी इम्यूनिटी पावर, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसी टेम्परेचर पे काम करता है जैस। इस कारण से कंडे सुलगा के लोग छाती में तेल से मालिश करते थे या फिर बच्चे को अगल बगल रखते थे जैस। अदरवाइज उसका और कोई साइंटिफिक रीजन उस कंडे का नहीं है जैस।
जी सर, आपने बताया कि कंडे सुलगाने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, केवल रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये निमोनिया जो है ए टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जब बच्चों को खांसी आती है तो सीने में जैसे साएं साएं की आवाज़ आती है, पसली चलने लगती है, और पसली चलती है तो माँ तेल लगाती है। तो तेल जो लगता है इसको क्या, मतलब उस ज़माने में तो दादी माँ के नुस्खे में ही आता था तेल लगाना, क्या आज की डेट में तेल लगाना उचित होगा?
तेल खास के हम लोग के यहाँ सरसों का तेल लगाते हैं। सरसों के तेल में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं गर्म करने से। तो मालिश करने से एक मसल होता है, उस लगाने से नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा कितना ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप सरसों तेल में अजवाइन लहसुन डाल के लोग लगाते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है, लोगों को चूँकि अब ये मिसलीव है कि ठंड के कारण उसको निमोनिया हो गया है, ठंड के कारण, तो इस कारण लोग मालिश करते हैं। तो मालिश करने से एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो पौधे से फैटी एसिड्स होते हैं तो ट्रांस इफिट हमारे स्किन के थ्रू अंदर जाते हैं। प्लस विटामिन डी, कभी के होते हैं कि तेल लगाने के बाद अगर आप सूरज की रोशनी में बच्चे को आप आधा घंटा छोड़ दें, एक घंटा छोड़ दें, तो विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। विटामिन डी एंटी इन्फेक्टिव होते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी हॉर्मोन्स होते हैं, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की बढ़ जाती है जो है। इस तरह नुकसान कुछ भी नहीं है, उससे कुछ ना कुछ फायदा ही है जो है।
डॉक्टर साहब, कहते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं उनको अपने फैशन के लिए वो बच्चों को भी छोड़ रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन उनकी स्किन काली ना पड़ जाए इसलिए वो बच्चों को धूप में तेल ही नहीं लगाना चाहती हैं, क्योंकि अब वो तेल को उन्होंने बॉडी लोशन के रूप में खुद की स्किन को मेंटेन करने के लिए कन्वर्ट कर लिया है, या ग्लिसरीन माँ ने खुद हलवा है, तो उनके हाथ पीले ना हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने बच्चों को लगाना छोड़ दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में आप हमारे यहाँ जो नवजात शिशु की माँ हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे?
बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा कि ये विटामिन डी हमारे शरीर में जो सनरेज होते हैं, सूरज की रोशनी होती है, आप पहले देखते होंगे हम लोगों के आंगन होते थे तो हमारे जो माताएं बहनें होती थी धूप में आंगन में बैठ के धूप सेकती थी, पूरे शरीर में धूप लगाती थी। कि आज हमारे समय बदलते चला गया, आज हमारे स्त्री माताएं जो धीरे धीरे वर्किंग होती चली गई, ऑफिस में बैठने लगी, हमारे जो एडल्ट मेल हैं, जो वयस्क मेल हैं, आउटडोर एक्टिविटीज उन लोगों की धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, हर किसी की होती जा रही है। तो उस कारण से आज भारतवर्ष में एक सर्वे हुआ था तो विटामिन डी की डिफिशेंसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग हमारे शरीर में धूप अब नहीं लगता है, और उसके बदले में क्या हो रहा है कि हम लोग गोली खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, लेकिन उतना फायदा नहीं करता है,
मतलब नेचुरल चीजें ज्यादा फायदा करती है।
इसलिए मैं सभी से मैं आग्रह करूंगा कि प्रतिदिन कम से कम नहीं हो तो संडे संडे के दिन ही, जिस दिन मौका मिले हफ्ता में 11 से 3 के बीच में आप 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे जितना शरीर को आप सन से एक्सपोज कर सकते हैं करके धूप में बैठें, खेलें, कुछ भी करें। बच्चे को भी प्रोत्साहित करें कि आउटडोर गेम जाकर खेलें, वो जितना बदन ठंड का टाइम है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब भी धूप निकलता है तो बैठ के बच्चे को, छोटे बच्चे, जो कोई ही बच्चे हो उनको आप नंगे बदन या कम से कम कपड़े में उसको खेलने के प्रोत्साहित करें, जिससे विटामिन डी की डिफिशेंसी नहीं हो। और विटामिन डी की डिफिशेंसी अगर नहीं होगा, जो विटामिन डी और ए दो एक ऐसे विटामिन होते हैं जो एक बार अगर स्टोर हो जाए तो 6 मंथ तक लीवर में जमा रहते हैं, जैसे वो पूरे हमारे जो ये सब विटामिन पर डे की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की, जैसे तो एक बार अगर स्टोर हो जाता है तो आप 6 महीने तक निश्चिंत हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि विटामिन डी अगर होगा तो बच्चे को इन्फेक्शन, जो रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, वो नहीं होंगे। जैसे
जी सर, तो आपने बताया कि विटामिन डी की डिफिशेंसी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है कि अमूमन महिलाएं गईं और उन्होंने जो मैंने प्रॉब्लम अभी आपको शेयर की थी कि वो धूप में नहीं बैठना चाहती हैं, बच्चों को तेल नहीं लगाना चाहती हैं, तो कोलिक एलसीफेरॉल का एसएचएट पी लेती हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे?
नहीं, ये जितने आजकल आर्टिफिशियल कोलिक एलसीफेरॉल है देते हैं, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि आप धूप से नहीं डरें, आप उस धूप का जो से जो यूवी लाइट निकलता है उसे विटामिन डी जो बनते हैं हमारे स्किन के थ्रू, जो हमारे स्किन नीचे में एक केमिकल होते हैं 7-dihydroergosterol होते हैं, जैसे जिसमें यूवी लाइट बन के विटामिन डी बनता है, जैसे तो उसका कोई तोड़ नहीं है, वो नेचुरल सोर्स जो है वो उसके अलग है, मतलब उसके जितने फ़ायदे हैं, ओरल जितना भी लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, अगर आप एक सच लेते भी हैं तो अगर तो उसका 30-40% एब्जॉर्ब होता है, जैसे।
हाँ डॉक्टर साहब, ये लेकिन इसमें जो ये लिखा रहता है कि 60,000 K या 60,000 IU, इस 60,000 का क्या मतलब है?
चूँकि हमारे पर डे रिक्वायरमेंट हर विटामिन की एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस होते हैं, जैसे
जी जी,
तो चूँकि हर एक यूनिट होता है, जैसे विटामिन ए है, डी है, इसका इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, एक इसके वजन के हिसाब से इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया। जैसे विटामिन डी है, इसके 400 इंटरनेशनल पर डे बच्चे में चाहिए, किसी में 600 चाहिए, अगर कोई डिफिशेंट कमी जिसमें विटामिन डी कमी होती है तो हम लोग, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन जैसे ओरली हम लेते हैं तो ये आर्टिफिशियल सोर्स है, इसका एब्जॉर्प्शन 30-40% ही हो पाता है, तो अगर आप 60 लाख 70 लाख 80 लाख लेंगे, आप नीड्स 1000 लेंगे तो 30% एब्जॉर्ब होगा आपका जो है विटामिन डी, तो इसलिए हम लोग इसका इंटरनेशनल यूनिट में ज़्यादा देते हैं। वैसे पर डे नेचुरल सोर्स जो है विटामिन डी का, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि जो हमारे रिफाइंड ऑयल होते हैं उसमें AD विटामिन फोर्टिफाइड होता है, जैसे उसमें मिले रहते लिखे रहते हैं विटामिन AND फोर्टिफाइड रिफाइंड ऑयल में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर रखा कि जितने हमारे खाद्य तेल हैं उसमें AOD मिला दिया जाए और विटामिन डी, तो इसलिए कम से कम ये दो विटामिन से आपकी डिफिशेंसी नहीं हो और इसे ज़्यादा मात्रा में देते हैं। वैसे छोटे बच्चे नवजात शिशु में 400 यूनिट्स पर डे होते हैं, जब मदर प्रेगनेंट होती हैं तो उनके अलग रिक्वायरमेंट्स, हर एज में कितने रिक्वायरमेंट्स हैं वो पर डे डिसाइड होता है जैसे, और ज़्यादा विटामिन डी लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये विटामिन ए और डी इसके ज़्यादा लेने से हाइपरटॉक्सिटी भी होती है जैसे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बिना डॉक्टरी सलाह के विटामिन ए और डी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जैसे।
जी सर, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसा कि हमने एक बार एक पोस्टर देखा था, मैं CMO ऑफिस गया हुआ था तो उसमें लिखा हुआ था कि 6 माह तक माँ को, शिशु को स्तनपान ही कराना चाहिए, इसके पीछे का क्या लॉजिक है?
इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भगवान ने जब एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसका आहार दे के भेजा है, और स्तनपान जैसे जानते हैं माँ का दूध अमृत के समान है, और 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए, हर तरह की माँ का दूध एक कंप्लीट फूड है, आप कह सकते हैं संपूर्ण आहार है, और 6 माह तक बच्चे को, जो हमारा बच्चे का जो सारे शरीर गट होते हैं, लीवर होते हैं, किडनी होते हैं, वो जो बने होते हैं उसी दूध के लायक बने होते हैं, वो गाय के दूध भैंस दूध के लायक नहीं होते हैं जैसे, और माँ का दूध पीने से माँ को भी फायदा होता है, बच्चे को तो फायदा होता ही होता है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि डब्बे का दूध पिला लेंगे, डब्बे के दूध बहुत महंगे होते हैं, बोटल फीडिंग लोग कराते हैं, बोटल फीडिंग कराने वाले बच्चे अक्सर जो होते हैं ओवरवेट हो जाते हैं, बच्चा जो है माँ को भले लगता है मेरा बच्चा बहुत मोटा हो गया है, हेल्दी हो गया है, लेकिन ज़्यादा मोटा बच्चा होना भी अच्छी बात नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं एक नवजात शिशु का वजन 2.5 से 3 किलो के बीच होना चाहिए, न उससे ज़्यादा होना चाहिए न उससे कम होना चाहिए। तो जब गर्भवती माताओं को मैं सलाह देना चाहता हूँ इस FM स्टूडियो की तरफ से, जब भी आप अपने खान पान पर, जब माता गर्भवती रहती हैं तो पोषक तो अपने खाने में प्रोटीन है, दाल है, पनीर है, ज़्यादा करके लें, आयरन और कैल्शियम गोली रेगुलर लेते रहें, विटामिन गोली लेते रहें, जिससे कि उनके बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा होता है वो अच्छे ढंग से हो। जब डिलीवरी हो तो बच्चे को जन कम से कम 2.5 किलो होना चाहिए जो है। और स्तनपान से एक फ़ायदा ये होता है माँ को, चूँकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का वजन 11 किलो के आसपास बढ़ जाता है, अगर आप माँ का स्तन लेंगे तो माँ का शरीर सुडौल हो जाता है, माँ को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, माँ को सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, और जितने फैट्स में जमा होते हैं उससे फैट्स 6 में धीरे धीरे ख़त्म होकर के उनका शरीर जो है पुराने अवस्था में लौट जाता है। और बच्चे को फायदे हैं, जो बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं उनको कभी डायरिया नहीं होता है, उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कभी नहीं होगा, जैसे उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है, किसी भी तरह का उसका इन्फेक्शन बच्चे को नहीं होता है जैसे।
जी सर, ये आपने बताया कि माँ को 6 महीने तक, इसीलिए लिखा जाता है कि माँ को अपने बच्चे को स्तनपान 6 महीने तक ज़रूर कराना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, हम लोग निमोनिया पर बात कर रहे थे, ड्यूरिंग निमोनिया, मान लीजिए किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है उस समय उसकी, और उसको स्तनपान भी कराना है, तो उस समय माँ का आहार क्या होना चाहिए?
अपने माँ को खाने में मैं कहता है कि उसकी दाल ज़्यादा करके होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, अगर नॉन वेज खाती है तो खा सकती हैं, पानी ज़्यादा पिए, आराम ज़्यादा करें। स्तनपान करती महिलाओं का सबसे ज़्यादा होता है कि उनको एक ही काम होना चाहिए, अपने बच्चे पर दिन भर अपना खाना खाएं और बच्चे का सारा काम खुद करें, जिससे बच्चा उनका बीमार न पड़े जो है सो। जितने बच्चे अपने पास रखेंगे, बच्चे जितना केयर करेंगी, चूँकि मिल्क जो होता है स्तन से निकलता है लेकिन इसके एक हार्मोन ब्रेन में होते हैं जो, जब तक माँ नहीं सोचेगी मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तब तक ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। जब तक हार्मोन रिलीज नहीं होते, अक्सर आप सुनते होंगे कहते हैं मेरा दूध सूख गया। दूध इसलिए सूख जाता है कि बच्चा पैदा होने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं, ऑपरेशन होने के बाद लोग कहते हैं उनका ऑपरेशन भी हुआ है, जबकि समान प्रसव के बाद आधे घंटे के बाद हम लोग कोशिश यही करना चाहिए कि बच्चे को माँ के पास दें और उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, स्तनपान के लिए प्रमोट करें, मेंटली प्रमोट करें उसको, नहीं बच्चा ये आपका है और इसको आप दूध पिलाइए। शुरुआती 1-2 दिनों में माँ के स्तन से गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला द्रव निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे कोलेस्ट्रम पीते हैं उसमें IgA नाम का एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, बच्चे को कई तरह की बीमारियों से बचाता है, वो वायरस, बैक्टीरियल, कई तरह की बीमारियों से। इसलिए शुरुआती जो हम लोग पहले क्या करते थे लोग, माँ शुरुआती 1-2 दिन दूध लोग पहले निकाल के फेंक देते थे माँ का, तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआती 1-2 दिन का जो दूध होता है, 1-2 बूंद जो निकलता है वही दूध बच्चे के लिए काफ़ी होते हैं। बच्चे कभी भी शहद, पानी, घुटी कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, न गाय का दूध, न बकरी का दूध। अक्सर मैं देखता हूँ सर मैं इसको बकरी का दूध दे रहा हूँ, गाय का दूध दे रहा हूँ, कभी नहीं। माँ पैदा होते ही बच्चे को आधे घंटे के बाद माँ को पास दे दीजिए बच्चे को, बच्चे को जो भी 1-2 बूंद दूध आता है और जो नॉर्मल मिल्क होते हैं 3रे दिन से निकलना शुरू होते हैं, जो बच्चे के लिए काफ़ी होते हैं। जैसे जितना बच्चे माँ के पास रहेंगे उतना ही माँ के लिए भी फायदा है, बच्चे के लिए फ़ायदा है। क्योंकि अगर माँ का दूध बच्चा नहीं पिएगा, कभी अक्सर देख होता है कि माँ का दूध बन रहा है बच्चे नहीं पी पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, सहायता लें क्यों नहीं, क्योंकि दूध अगर जम जाता है स्तन इन्फेक्शन हो जाता है, आप देखते होंगे वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे को पैदा और सीजरियन सेक्शन के बाद दो, चूँकि आजकल पहले सीजरियन सेक्शन जब होते थे तो उस समय जनरल एनेस्थेसिया में होता था, ऑपरेशन होने के बाद माँ बेहोश हो जाती थी, लेकिन आजकल लोकल एनेस्थेसिया में सीजर होते हैं तो माँ होश में ही रहती है जैसे, तो 2 घंटे के बाद से बच्चे को स्तनपान अवश्य ही कराएं उसको, जैसे माँ के पास दें, माँ को सपोर्ट करें, पोस्चर में सपोर्ट करें, जैसे ही सपोर्ट करना हो करके, और उस बच्चे को दूध पिलाएं, जिससे कई तरह की बीमारियों से नवजात शिशु बचा सकता है और नवजात शिशु का मृत्यु दर इससे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।
डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर SK मिश्र साहब, जो कि अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं रेलवे चिकित्सालय पूर्वोत्तर रेलवे गोंडा में, वो हमारे बीच आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि नवजात शिशुओं को निमोनियों से कैसे बचाया जाए। अब नवजात से थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ जाते हैं, 2 साल से 5 साल के बच्चों को अगर ये ब्रोंकाइटिस या इस तरह की कोई बीमारी आ जाती है जो मतलब सर्दी जनित हो सकती है, इनसे कैसे बचें वो, और इनको इनसे बचने के उपाय और इसके लक्षण क्या होंगे?
छोटे बच्चे में जब निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या चेस्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं तो मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले बच्चे का जो टीकाकरण हो रहा है आजकल इस एज ग्रुप में सबसे कॉमन कॉज जो होते हैं एच इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया होता है। आज सरकार द्वारा इसके अगेंस्ट में टीका आ गए हैं और सभी CHC, PHC सभी अस्पतालों में मुफ्त में टीके लगाए जा रहे हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों का शुरू से पैदा होने के बाद से ही समय से जाके टीका लगाएं, तो इस बीमारियों से आप बच सकते हैं। सर्दी है, सर्दी में बच्चे को गर्म कपड़े दीजिए, खान पान सही रखिए, प्लेंटी जो न्यूट्रिशस फूड्स होते हैं वो दीजिए। जंक फूड आजकल अक्सर देखते हैं कि बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं जिस कारण से उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं और उस कारण से बच्चे अक्सर बीमार होने लगते हैं। बच्चे को जब भी मौका मिले उसको धूप लगाएं जिससे विटामिन डी जाएगा, हरी साग सब्जी फल फूल फ्रूट्स दें, आउटडोर गेम खेलने के लिए दें, इस तरह बीमारियों से बचा सकता है। बाहर से जब भी कोई आपके घर में काम करके आते हैं जो हमारे वयस्क होते हैं, वर्किंग मेल फीमेल जो होते हैं पुरुष आते हैं, तो घर से पहले ही जूते चप्पल जैसे हम लोग बाहर खोलते हैं, हाथ पैर जैसे धुल के सैनिटाइज करके तभी आप बच्चे को छुएं, जिससे इस तरह के जो वायरस बैक्टीरिया जो आप हाथ, चूँकि अक्सर ये बैक्टीरिया वायरस हमारे हाथ मुंह नाक के थ्रू ही आते हैं जैसे, तो आएंगे तो इससे बचा जा सकता है। और लक्षण मैं पहले ही बताया कि इसमें ही बच्चे को जैसे अगर कुछ ब्रोंकोलाइटिस होगी बच्चे को तो फीवर आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर वो इसके जो रोंकाई कहते हैं सांस की आवाज़ आने लगती है जैसे, तो बचने को पाए टीकाकरण हर बच्चे का कराएं। और कभी भी इस तरह के लक्षण अगर आए तो तुरंत डॉक्टर से, आसपास कोई भी डॉक्टर्स हों जो हमारे MBBS डॉक्टर हों, MD डॉक्टर्स हों, उसके तुरंत आप संपर्क करें और इस तरह की बीमारी से आजकल इलाज करने के बाद 100% ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं।
जी सर, तो सर मुझे एक लाइन याद आ रही है, एक डॉक्टर जिसकी खुद की जान जोखिम में है पर वह जोखिम में फंसे मरीज को जोखिम से निकालना ज़्यादा ज़रूरी समझता है। तो जैसे कि सर आज जो डॉक्टर है उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज से नहीं बहुत पहले से ऐसा होता है, तो आप सभी डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? या सर कभी ऐसा हुआ कि आप खुद स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे थे लेकिन आपको आपके मरीजों का चेहरा याद आया और आपने कहा नहीं जाना है, ऐसा कभी हुआ सर?
कई बार ऐसे होते हैं कि मरीज पीड़ा, कोई अगर पीड़ित व्यक्ति आता है आपके पास तो वो तो उसकी सेवा करना उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती है। कई बार अक्सर होते हैं कि हम लोग बीमार होते हैं कहीं जाने का मन नहीं करता है, लेकिन मरीज उसका दर्द देख के जो है अपना दर्द मैं भूल जाता हूँ या डॉक्टर लोग भूल जाते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि अपना सब कुछ भूल के कहीं जाना होता है वो छोड़ के उस मरीज को बचाना, उस मरीज को देखना उनके लिए परम कर्तव्य भी है और उनके सर्वोपरि, उनके सर्वोपरि है। जैसे चूँकि मुझे हम लोग जब ओथ लेते हैं MBBS करने के बाद तो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसलिए सबका दुख मैं हरण कर सकूं इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और इसी ओथ के साथ हम लोग हर चिकित्सक जितने प्राणी हैं उनका दुख को मैं हरण कर सकूं, मेरे पास ऐसी विधा है, तो मैं चाहता हूं कि हर डॉक्टर से, डॉक्टर हमारे साथ करते ही हैं जैसे, अपना दुख भूल के अपना हर काम को प्रायोरिटी छोड़ के सबसे पहले वो मरीजों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं।
जी सर, तो जैसे कि सर हम जानते हैं कि धरा पे भगवान खुद नहीं मौजूद हैं लेकिन उन्होंने डॉक्टर के रूप में आपको यहाँ हम लोगों के लिए भेजा है, तो क्यों ना हम आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग भगवान कहाँ है तू ये आपको सुनाते हैं और इसी के साथ फिर से आपसे अपने लिसनर को रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए दोस्त कहीं जाइएगा मत और बने रहिए, सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है।